सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं कि हमारे देश को कौन सी चार बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्यों की जरूरत है, टारगेट की जरूरत है, उद्देश्यों की जरूरत है। लेकिन इससे पहले आइए कुछ जो दूसरी घटनाएं हैं, जो खबरें हैं, उन्हें देख लेते हैं। आज के अखबारों में आपने पढ़ा ही है, न्यूज में भी आपने सुना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, और वो ये है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को लेकर। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, कैबिनेट ने फैसला किया है कि इस तरह का मिशन तैयार किया जाएगा और इसके लिए 19,744 करोड़ रुपए, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं कि भारत ने सन 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। नेट जीरो का मतलब है कि हम जितना कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना ही हम अवशोषित भी करेंगे। तो ठीक है, अवशोषित करने की तो देखिए अपनी एक सीमा है कि आप जंगल लगाएंगे तो कार्बन अवशोषित होता जाएगा, और भी कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन हम उत्सर्जन को तो कम करने के लिए आगे आ सकते हैं। जितना हम कम उत्सर्जन करेंगे उतना कम अवशोषण की जरूरत पड़ेगी। तो जो ग्रीन एनर्जी है वो बेसिकली यही है कि जो जीवाश्म ईंधन है उससे कार्बन ज्यादा उत्सर्जित होता है, ग्रीन एनर्जी से उत्सर्जित नहीं होता, और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है बेसिकली ग्रीन एनर्जी ही है। इसके बारे में जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। तो पहला तो यह है कि इसके लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और यह लक्ष्य रखा गया है कि हम इससे 50,00,000 टन हरित हाइड्रोजन हर साल तैयार कर लेंगे। 50,00,000 टन हरित हाइड्रोजन, राइट, और यह सब 2030 तक हम इसे हासिल कर लेंगे। और जब हम इसे हासिल कर लेंगे तो एक जो बहुत बड़ी बात होगी वो ये होगी कि हमें, आप जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ आयात करने पड़ते हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सब हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे यहां अपना उत्पादन बहुत कम है जबकि लागत बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इतना हाइड्रोजन उत्पादित कर लेते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, तो लगभग जो पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर 1,00,000 करोड़ रुपए की हमारी बचत हो जाएगी। हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं तो 1,00,000 करोड़ रुपए। अभी यूक्रेन के मामले में आप देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन के युद्ध के समय में भारत को किस तरह से संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन रशिया से हम मंगा रहे हैं। एक बहुत बड़ी भारत की ये ताकत है कि उसने झुकना अस्वीकार कर दिया कि नहीं, हम रशिया से पेट्रोलियम पदार्थ मंगाते रहेंगे। तो रूस अभी हमें दे रहा है, दूसरे देश भी दे रहे हैं, लेकिन रूस भी हमें दे रहा है, और भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वो पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में अपने को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाए ताकि दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो सके। दोस्तों, खासकर ये जो हरित हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जैसे रिफाइनिंग है, स्टील है, सीमेंट है, आयरन ओर है जिसे हम लौह अयस्क कहते हैं, जहाज रानी है, और खासकर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उनमें प्रदूषण जो फैलता है उसकी जगह पर हम हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इस प्रदूषण को बहुत कम कर सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि 2030 तक जब हम अपने इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो इससे लगभग 6,00,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा और 8,00,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो निवेश भी बढ़ेगा। देखिए, इकोनॉमिक्स को आपको ऐसे इंटर रिलेट करके ही पढ़ना है। 8,00,000 करोड़ रुपए का निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट। अब चाहे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से आए, चाहे फॉरेन से आए, जहां से भी आए, तो उद्योग स्थापित होंगे, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो किस तरीके से एक साइकिल जनरेट होती है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर अगर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक ले जाना है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में। एक दो थोड़ी सी जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वे भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। खासकर ये जो तथ्य मैं अब आपको, दो तथ्य बता रहा हूं, ये बेसिकली फैक्ट्स के रूप में हैं, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के रूप में है, लेकिन इनका इस्तेमाल मुझे लगता है कि सिलेबस के अंतर्गत आप कर सकते हैं। आपके सिलेबस में डायरेक्ट ये चीजें नहीं है, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे या ऐसे लिख रहे होंगे तब आप बकायदे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि ये हमें दृष्टि भी देते हैं, भले हम सीधे सीधे इसका इस्तेमाल न कर पाए, लेकिन ये हमें सोचने के लिए एक गलियारा दे देते हैं कि आप उसमें सफर करें और नई चीजों को देखें, नई चीजों को सोचें। जैसे आप अक्सर ये सुनते हैं कि भारत में धीरे धीरे जो हमारी ग्रामीण आबादी है वो शहरों की तरफ आती चली जा रही है, शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, इससे हमारा जो सिस्टम है वो कलेप्स कर रहा है ना, गांव हमारे खाली होते जा रहे हैं, इस तरह की बातें आप सुनते हैं और इसे रोका नहीं जा सकता। आपको मालूम है कि धीरे धीरे हमारी जो शहरी आबादी है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो उसके लिए क्या किया जाए। जापान एक काम कर रहा है, जापान में भी ये संकट है। जापान का जो सबसे बड़ा शहर है टोक्यो, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 4.25 करोड़ के आसपास हो गई है, वहां बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, सिस्टम कोलैप्स करने की स्थिति में है। तो जापान भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि केवल टोक्यो ही नहीं बल्कि दूसरे शहर भी घने होते चले जा रहे हैं और गांव खाली होता चला जा रहा है, गांव के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता चला जा रहा है। तो इसके लिए जापान ने जो एक कदम उठाया है वो ये है कि जो महानगरों में रह रहे हैं, यदि वे महानगरों को छोड़कर गांव चले जाते हैं तो सरकार उन्हें इंसेंटिव देती है। भारतीय मुद्रा में 6,36,000 रुपए का हर व्यक्ति को इंसेंटिव दिया जा रहा है, हर बच्चे के हिसाब से। मान लीजिए कि एक परिवार है, उसके 2-3 बच्चे हैं, तो कैलकुलेट कर लीजिए हर बच्चे के हिसाब से उन्हें इतना इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही जब वो वहां जाएंगे तो उनके लिए फिर व्यवस्था की जाएगी कि इनको रोजगार कैसे प्रोवाइड किया जाए इनके लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएं। इस तरह से सरकार उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की ओर लौटने के लिए आप ये कह लीजिए कि इंसेंटिव दे रही है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया है। जो दूसरी खबर है दोस्तों वो इसराइल को लेकर के है। इसराइल ने अब एक नए मंत्रालय की शुरुआत की है, राष्ट्रीय मिशन मंत्रालय। इस मंत्रालय का काम क्या है? इस मंत्रालय का काम यह है कि जो इसराइल है, आप जानते हैं कि वो यहूदी हैं, यहूदी धर्म को मानते हैं, तो यहूदी जो सिद्धांत हैं कैसे उनके उन सिद्धांतों से लोगों को जोड़ा जाए, उन सिद्धांतों के प्रति उनके मन में गहरी भावना पैदा की जाए, गहरी आस्था पैदा की जाए और उन्हें जो यहूदियों का जो इतिहास है वो बताया जाए, और ऐसी कोई भी बात जो यहूदियों के खिलाफ हो, यहूदियों के इतिहास के खिलाफ हो, उनके ध्यान में नहीं लाई जाए, ना आने पाए। तो सीधी सी बात है कि ऐसा करने के लिए जो सबसे बड़ा जो माध्यम आपका हो सकता है वो सिलेबस हो सकता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, स्कूल में मिडिल लेवल पर, हायर लेवल पर क्या पढ़ाया जाए। तो ये जो राष्ट्रीय मिशन मंत्रालय बनाया गया है उसका पर्पज ही यही है कि वो देखें कि जो बच्चे हैं, स्पेशली जो प्री प्राइमरी कक्षाओं में हैं, मिडिल लेवल पर हैं, उन्हें यहूदी समर्थित इतिहास बताया जाए। यानी कि आप यूं कह लीजिए कि एक प्रकार से देश में राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं या कट्टरतावादी राष्ट्र उसे बनाया जा रहा है। अब ये सोचने की बात है, ये तथ्य कैसे आपके लिए उपयोगी हो सकता है? देखिए, अक्सर आप बीच बीच में हमारे यहां भी इस तरह के विवाद की स्थिति सुनते होंगे कि इतिहास की किताबों को बदला जा रहा है और चैप्टर्स नए लाए जा रहे हैं, नए तरीके से उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है, इस तरह की बातें सुनने में आती होंगी। क्या आप इस तरह की बातों को इसराइल के साथ जोड़कर देख सकते हैं? अब निष्कर्ष आपको निकालना है, लेकिन आप एक उदाहरण के रूप में तो दे ही सकते हैं कि ऐसा भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी होता है। इसराइल उसका एक उदाहरण है, दूसरे देशों में भी होता है, ये कोई नई बात नहीं है। इस पर मैंने बहुत पहले एक चर्चा की थी आप सबके साथ, लेकिन अब उसे मैं यहां दोहराने नहीं जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने चेतन भगत का एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था, आज का मुख्य विषय उसी से ही मैंने लिया है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया है कि अगर भारत को विश्व शक्ति बनना है, विश्व में अपनी प्रतिष्ठा कायम करनी है, तो उसे क्या करना चाहिए। इसे ही मैंने नाम दिया है, देश को चाहिए 4 लक्ष्य। मुझे विश्वास है कि डेफिनेटली आप लोगों ने उस लेख को पढ़ा होगा, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपने उसे मिस क्यों किया, क्या आपको उपयोगी नहीं लगा। दरअसल होता यह है कि जब आप किसी भी आर्टिकल के बारे में फैसला करते हैं कि यह हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, यानी कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके दिमाग में बस एक बात आती है, और वो बात गलत नहीं है, वो ये कि इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति अभी तक लगभग लगभग इसी पैटर्न की रही है, जबकि आपको एक और भी पैरामीटर लेकर चलना चाहिए। नो डाउट कि परीक्षा में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा वो एक आधार है और एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और आधार ये होना चाहिए कि यह जो आर्टिकल है ये मेरे अंदर विचारों की क्षमता को कितना मजबूत बना सकेगा, क्या यह मुझे सोचने समझने की एक नई दृष्टि दे सकेगा। अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मूल्यांकन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, उपाय बताइए और क्या किया जाना चाहिए, आप क्या समझते हैं, ये इसी तरह के तो पुछल्ले जुड़े हुए होते हैं, उनके बारे में आप कैसे लिखेंगे। और याद रखिए कि उन पर बहुत ज्यादा दारोमदार इस बात का होता है कि आपको कितने नंबर दिए जाएं, क्योंकि वहीं तो आप हैं, बाकी जगह तो किताबें हैं, वहां से आपने पढ़ा है और आप उसे लिख करके आ जा रहे हैं, यहां आप होते हैं मूल्यांकन में, परीक्षण में, आलोचना में, अपने विचार रखने में, उपाय बताने में। अब ये उपाय आपके पास आएंगे कहां से? देखिए, सीधी सी बात है कि ये उपाय पढ़ने से आएंगे। जब आप नई नई चीजें पढ़ेंगे उसमें ये आर्टिकल आपकी मदद करेगा। आप देखिए कि इसमें उन्होंने सीधे सीधे चार उपाय बताए हैं और उसका फिर विश्लेषण भी किया है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं विश्लेषण में जाऊं, और आपके पास आर्टिकल है प्लीज आप उसे पढ़ें और अपनी तरफ से उसे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें। एक तो यह है कि हमें अपनी इकोनॉमी को उच्च आय वाली बनानी है, यानी कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर होना चाहिए, जीडीपी हमारी बढ़नी चाहिए। फिर दूसरा यह बताया कि उन्होंने अपनी डिफेंस, हमें अपने डिफेंस को मजबूत बनाना है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना है। तीसरा उन्होंने बताया कि हमारे जो एथिकल जो थॉट्स हैं, हमारे जो नैतिकता है और हमारी जो सोच है वो उच्च स्तर की होनी चाहिए। और चौथा उन्होंने ये बताया है कि खासकर भारत में जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हमारे लोग जो खुले दिमाग के हैं और हम जो एक स्वतंत्रता प्रेमी हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग, तो इन सबको बनाए रखना है। और ऐसा क्यों है बकायदे उन्होंने इसके अंतर्गत बताया है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब इसे पढ़ें, ये चार पॉइंट्स नोट कर लें और चार पॉइंट्स के एक दो सब पॉइंट्स भी नोट कर लें, तो ये आपके दिमाग को मजबूती प्रदान करेगा, सोचने समझने की क्षमता आप में विकसित करेगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। इन्हीं में से एक दोस्त हैं अमित कुमार त्रिपाठी, सतना मध्य प्रदेश से, आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।